नमस्कार भारत, तारीख 28 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। पाकिस्तान में होने वाली सार्क बैठक में हिस्सा नहीं लेगा भारत। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को सौंपे उड़ी हमले के सबूत। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी बोले,
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक बात है। ये एक अच्छा फोरम होती है उन ममालिक के दरमियान भी जिनके ताल्लुकात अच्छे ना हो, जैसे कि आज भारत और पाकिस्तान के बदकिस्मती से नहीं है।
उड़ी हमले के बाद अगर भारत ने सिंधु समझौता तोड़ा तो
इससे कश्मीर के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लड जोन बहुत है। चाइना भी फिर जो भारत के लिए वो भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे जिससे उनके लिए पानी लेंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू के कश्मीर के साथ बिहार का प्रस्ताव वाली पोस्ट पर बवाल। कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। भारत इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर को होने वाले सार्क सम्मेलन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और इस बारे में सार्क सम्मेलन बैठक की अध्यक्षता कर रहे नेपाल को इसकी जानकारी दे दी है। भारत ने नेपाल से कहा है कि एक देश ने ऐसा माहौल बना दिया है जो शिखर बैठक के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग और चरम पंथ एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए भारत इस्लामाबाद सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। सीरिया के एलेपो शहर में सीरियाई सेना और सरकार समर्थक लड़ाकों ने कई मोर्चों पर विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी सेना ने एलेपो शहर के उत्तर में स्थित इलाकों को कब्जे में ले लिया है। हमले के समर्थन में हवाई हमले भी जारी हैं। अमेरिका ने प्रभावित लोगों के लिए करीब 23 अरब 92 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। अमेरिकी विदेश विभाग में सहायक मंत्री एनी रिचर्ड ने धन मुहैया कराने का ऐलान किया।
This new funding brings U.S. humanitarian assistance in response to this conflict to over 5.9 billion.
इस नई वित्तीय मदद के ऐलान के बाद इस संघर्ष की शुरुआत से अब तक अमेरिका द्वारा दी गई मानवीय सहायता करीब 5.9 अरब डॉलर हो गई है। सीरिया के लोगों को इस अभूतपूर्व स्तर की त्रासदी और मानवीय पीड़ा को सहते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, जो आज भी जारी हैं। ये घोषणा अमरीकी लोगों की असीम उदारता को दर्शाता है। इस धनराशि से संयुक्त राष्ट्र और अन्य दानदाता संस्थाओं को सीरिया के अंदर और क्षेत्र में शरणार्थियों को भोजन, साफ पानी और चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने में मदद मिलेगी। एनी रिचर्ड के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में हुए 2 आत्मघाती हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हैं। इन हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। जेदा में हुए हमले में हमलावर ने 8 लोगों को निशाना बनाया। इसके अलावा बाया में हुए हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। तुर्की की यात्रा पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन के आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ छोड़ देने के बाद वे तुर्की के साथ एक बड़ा व्यापारिक सौदा करने के पक्ष में हैं। यू छोड़ने के लिए ब्रिटेन में आंदोलन की अगुवाई करने वाले जॉनसन ने यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिशों में ब्रिटेन तुर्की की मदद करेगा। संवाददाताओं का कहना है कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह के दौरान यू छोड़ने के पक्षधर नेताओं की बयानबाजी जॉनसन के इस बयान के एकदम उलट है, जिसमें नेता कहते थे कि तुर्की का सदस्य बनना यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पत्रिका न्यू साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का पहला बच्चा एक नई 3 व्यक्ति प्रजनन तकनीक का इस्तेमाल कर पैदा हुआ है। 5 महीने के इस लड़के में सामान्य तौर पर अपने माता पिता का डीएनए है और साथ में एक दानकर्ता का जरा सा आनुवांशिक कोड। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक में वो हिस्सा नहीं लेगा। कल देर शाम भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई। सिंधु नदी समझौता व पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की खबरों के बीच इस कदम के बारे में कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। उड़ी में चरमपंथी हमले को ध्यान में रखकर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे जरूरी व उचित कदम बताया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका समर्थन करने की बात कही है, लेकिन इसे बहुत कड़ा कदम नहीं माना है। सुनिए निखिल रंजन की रिपोर्ट।
भारत के प्रधानमंत्री सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा,
इंडिया रिमेन्स स्टेडफास्ट इन इट्स कमिटमेंट टू रीजनल कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट्स।
भारत क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और संवाद की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, लेकिन मानता है कि ये सब सिर्फ चरम पंथ से मुक्त माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में जो माहौल है उसमें भारत सरकार इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क सम्मेलन में शामिल होने में असमर्थ है। भारत ये समझता है कि कुछ दूसरे सदस्य देश भी नवंबर 2016 के इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन में शामिल होने के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।
उड़ी में चरमपंथी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते जिस तेजी से खराब हुए हैं उसमें इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। मंगलवार की सुबह सुबह ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इसके तुरंत बाद ही दिल्ली में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें उड़ी हमले में पाकिस्तान के चरमपंथियों के शामिल होने के कथित सबूत दिए गए। इसके बाद देर शाम ये खबर भी आ गई कि भारत सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक का बहिष्कार करेगा। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इसे उचित कदम बताते हुए कहा है कि इस वक्त ऐसा ही होना चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद तरुण विजय ने बीबीसी से कहा,
जाया वहाँ जाता है जहाँ पे संवाद हो, बातचीत हो और विश्वसनीयता हो। पाकिस्तान के हाथ खून में रंगे हैं निर्दोषों के और वह स्वयं में एक आतंकवादी देश बन चुका है। ऐसी परिस्थिति में सार्क का एक दिखावा और ड्रामा करके वहाँ जाना और उन लोगों के बीच में बड़े आदर्शों की बात करना और शब्दों पर भरोसा और जो बात कही जा रही है उसे कहने वाले की व्यक्ति नियत साफ हो। पाकिस्तान आतंकवादी जिहाद की फैक्ट्री बन गया है, वह मुल्क नहीं रह गया है।
इससे पहले सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु संधि को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद सिंधु आयोग की बैठक को फिलहाल रद्द करने का फैसला किया गया। ये बैठक साल में दो बार होती है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। सार्क देशों के बैठक के बहिष्कार को भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन देने की बात तो कही है, लेकिन इसे बहुत सख्त कदम नहीं माना है। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद,
भारत सरकार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आइसोलेट करने के लिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए न करे, इस पर दबाव बनाने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। अगर भारत सरकार ने अपने विवेक में समझा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कदम है तो हम लोग हर उस कदम का स्वागत करेंगे और हर उस कदम पे साथ हैं भारत सरकार के।
भारत पाकिस्तान को कठोर जवाब देना चाहता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने खुद को बहुत आक्रामक भी नहीं दिखाना चाहता। उसकी ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है और पाकिस्तान इस पर क्या रुख अपनाता है ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों के चलते सार्क देशों की बैठक में जाने से मना किया है। हालांकि इस बार स्थितियों को पहले से ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। निखिल रंजन ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी से पूछा इस स्थिति को वो कैसे देखते हैं।
अफसोसनाक बात है, उसकी वजह यह है कि रीजनल कॉन्फ्रेंसेज जो हैं या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, ये एक अच्छा फोरम होती हैं उन ममालिक के दरमियान भी जिनके ताल्लुकात अच्छे ना हो, जैसे कि आज भारत और पाकिस्तान के बदकिस्मती से नहीं है। बल्कि मुझे याद है कि जब हमारा बिगेस्ट ब्रेक थ्रू हुआ वाजपेयी साहब के साथ, तो वो आए थे सार्क की कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद 2004 में, तो साइडलाइंस पे जो मीटिंग्स हुई थी उसके नतीजे में फेमस इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था जिसके वजह से पाकिस्तान इंडिया का जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ और इतना कामयाब हुआ कि हम कश्मीर के तकरीबन हल के करीब पहुंच गए।
अब पाकिस्तान क्या कर सकता है?
पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया ने रिफ्यूज किया, पाकिस्तान को जबरदस्ती तो नहीं उनको बुला सकता। लास्ट टाइम जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, ये पहली दफा नहीं हुआ, तो उस वक्त बेगम खालिदा जिया की हुकूमत थी बांग्लादेश में जो कि इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं थी, वहां भी हो रहा था कि उन्होंने बहुत उसको डिले किया, नहीं अटेंड कर रहे थे उस वक्त। लेकिन खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। मैंने फिर बात की इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई न करें और आपको ढाका जाना चाहिए।
क्या लग रहा है कि जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अब किसकी तरफ से बेहतरी की कोशिश होगी, कहां से फिर?
बात यह है कि पाकिस्तान ने तो नहीं कहा ना ट्रीटी की बात की है। ट्रीटी तो देखे ना, वो तो आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, सरताज अजीज ने, एडवाइजर ने, कि वो तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बराबर होगा ना। क्योंकि अगर आप ये कहें कि हम पाकिस्तान के लोगों को भूख से मार देंगे तो वो फिर लोग कहेंगे अगर मरना ही है तो फिर लड़के मर जाएं, मतलब है कि भूख से क्यों मरें। और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बयान जो आया है एक दो दिन के बाद आया है, जब उन्होंने केरला में बयान दिया था आए गुर्बत के खिलाफ मिलकर लड़े, वो अच्छा बयान था। उसके बाद गुर्बत को अच्छा तरीका है फाइट करने का कि आपने काम पानी बंद कर देंगे। ये बड़े नेगेटिव किस्म के बयान आ रहे हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान में अभी तक रिस्पॉन्सिबल लोगों ने इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं की। गुस्सा यहाँ भी बहुत है, जो कश्मीर में पिछले 80-90 दिन से हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं हुई।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि जैसे आपने कोशिश की थी भारत को मनाने की या उनसे बात करके, क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होगी इस वक्त?
देखिए मैं आजकल टेम्परेचर इतना ऊंचा हो गया है, अकल की तो बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के कॉमन फ्रेंड्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, यूरोपियन यूनियन है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के बिल्कुल ही मुंह के ऊपर बैठा धाने पे, उनके सेंट्रल एशिया बहुत इंटरेस्ट है, उनके अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है, एंड बोथ पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर बाज, अमेरिका हिंदुस्तान से ताल्लुकात भी बहुत बेहतर कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि टोटल इंटरेस्ट वो लूज कर जाएंगे। हाँ, हालांकि पब्लिकली उन्होंने ये कहा है कि आप दोनों आपस में मिलकर इसको तय करें, लेकिन ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते, पाकिस्तान इंडिया को मिनी स्टेट्स तो नहीं है कि हम डरा के टेबल पे ले आएंगे, लेकिन एक वे आउट मुझे नजर आ रहा है, टेम्परेचर पहले लो हो और उसमें पाकिस्तान इंडिया कॉमन फ्रेंड्स एक रोल प्ले कर सकते हैं।
ये थे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी। उड़ी हमले को इस वक्त भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने का दोषी बताया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने 2-3 महीने पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रहे जी पार्थ सारथी भी उनमें हैं जो ये मान रहे थे कि भारत सार्क का बहिष्कार कर सकता है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने जी पार्थ सारथी से पूछा अब आगे क्या हो सकता है।
ये आश्चर्यजनक चीज नहीं है, स्वाभाविक है, और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 हफ्ते से मैं लिखता आ रहा हूँ इसका बहिष्कार करना चाहिए, जब से उरी पर वो हमला हुआ, और मुझे ऐसे कई संकेत मिल गए थे उरी से पहले भी कि ये हम विकल्प तैयार रख रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि आप शायद जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में गोवा में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, जहां राज अध्यक्ष रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और ब्राजील के यहाँ आएंगे, लेकिन उसके साथ हमने कदम ये लिया कि हमारे पास 2 क्षेत्रीय संगठन है, एक जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क और दूसरा है जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं, यानी कि जो देश भारत के पूर्वी ओर में हो उनके साथ एक क्षेत्रीय संगठन है, उसमें शामिल है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और आसियान से म्यांमार यानी कि बर्मा और थाईलैंड। और इस क्षेत्रीय संगठन का मुख्य मकसद ये है कि एक तो अपने आर्थिक एकीकरण यानी कि एक कॉमन मंडी बनाए हैं, और दूसरी बात ये कि उसे आगे ले जाएं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन में ये सब हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान ने रुकावट डाल पाला है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो है इनमें तो ज्यादातर उनके जो सदस्य हैं वो बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं, तो गोवा के जो शिखर सम्मेलन हो रहा है हमने सार्क को निमंत्रण पत्र नहीं दिया है, हमने निमंत्रण पत्र दिया है बिम्स्टेक के सदस्यों को, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा था कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए हमारा नजर दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन से बिम्स्टेक की ओर जा रहा था।
इस बात की कितनी उम्मीद है कि सार्क संगठन के जो दूसरे देश हैं वो भी भारत के इस फैसले में उसका साथ देंगे?
स्पष्ट हम जानते हैं कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे साथ हैं इसमें, और जरूर मुझे यकीन रखता हूँ भूटान और शायद नेपाल भी संगठित हो जाए। तो क्या रहा सार्क का, पाकिस्तान क्या सिर्फ मालदीव्स के साथ बैठकर एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन रखेगा?
तो फिर एक तरह से सार्क के पूरे काम काज पर ही रोक लग जाएगी एक तरीके से?
इसका मतलब ये नहीं कि जो सहयोग अभी जारी है उसको हम मिटाने वाले हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को जाने से क्या फायदा? पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है कि किसी न किसी तरह चीन, जो एक दक्षिण एशियाई देश नहीं है, उसे भी इस संगठन में शामिल करें, तो हम शामिल करें चीन को इस संगठन में।
अभी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उसको ठीक करने के लिए ये एक कदम के रूप में उठाया गया।
हमने तय कर लिया कि जब तक आतंकवाद पर वो नियंत्रण नहीं लगे और नहीं रोके तो कोई द्विपक्षीय बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये कि अगर वो इसी दिशा में चले जिससे वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर वो रुकावट डालें, तो हमें और कई विकल्प हैं उसे आगे ले जाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान अपने हरकतों से हमारे क्षेत्रीय सहयोग पर कुछ कर नहीं पाएगा।
उड़ी के बाद भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो यहीं रुकेंगे या अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है?
देखिए भाई, भविष्य भविष्य होता है, और जब किसी रास्ते में चलते हैं तो बीच में रुकना अच्छी बात नहीं।
पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे जी पार्थ सारथी से बात कर रहे थे निखिल रंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ी में चरमपंथी हमले के बाद भारत सरकार सिंध समझौते से हटने का विचार कर रही है। पाकिस्तान ने तो इसे युद्ध छेड़ने जैसा कहा है, लेकिन भारत प्रशासित कश्मीर में भी बहुत से लोग इसके विरोध में हैं। कश्मीर में आम लोग, विश्लेषक और राजनेताओं की इस मुद्दे पर क्या राय है, सुनिए रियाज मसरूर की इस रिपोर्ट में।
सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच 19 सितंबर 1960 में तय पाई थी। इस ट्रीटी के अनुसार जम्मू कश्मीर से गुजरने वाली 6 नदियों में 3 पर पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार होगा, जबकि बाकी 3 नदियों जहलम, सिंध और चनाब पर भारत को बांध बनाने या पानी रोकने का अधिकार नहीं है। ये संधि कई जंगों के बावजूद अब भी मौजूद है, लेकिन उड़ी में हमले के बाद अब भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इस संधि को तोड़ दे। कश्मीर में आम लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका गया तो कश्मीर में फिर से अशांति फैल जाएगी।
इंडस वाटर ट्रीटी हो या ना हो, इसको स्क्रैप किया जाए या ना किया जाए, जो इस वक्त बेसिक मसला है कश्मीरियों का वो उनकी हक खुद इरादियत का है। हम उसके लिए कश्मीरी आवाम इस वक्त जाने कुर्बान कर रहे हैं कि इनको आज़ादी मिले हिंदुस्तान के तसल्लुत से।
इससे कश्मीर के लिए प्रॉब्लम बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लड जोन बहुत है, इस पर फ्लड्स आएंगे। दूसरा, चाइना भी फिर जो भारत के लिए वो भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे जिससे उनके लिए पानी लेंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया पे भी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत के पूर्व पानी संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज तो यहां तक कहते हैं कि इस निर्णय पर चीन की ऐसी प्रतिक्रिया होगी जिसे भारत में अंधेरा छा जाएगा
और जम्मू डूब जाएगा, पूरे पंजाब को सैलाब घेर लेगा। और ये बाखबर रहो, अगर चीन जागता है डाइवर्ट करने के लिए, चीन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सतलुज को तो कर ही सकते हैं, और आपका बाखरा डैम जो है खुश्क हो जाएगा और हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में अंधेरा छा जाएगा। महज़ब तरीका नहीं कहने का, लेकिन मैं मजबूर होता हूँ कहने के लिए कि छिट्टी का दूध याद आएगा। सतलुज तो तिब्बत से आता है और चीन से सिंध बहता है इधर की तरफ। इन दोनों दरियाओं का रुख मोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस ट्रीटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो सबसे पहले चीन जो है जागेगा इस तरफ।
विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया में कई देशों के बीच पानियों का शांतिपूर्वक बंटवारा हुआ है। अरब क्षेत्र में नील की नदी मिस्र और लेबनान के बीच बहती है, और सिंध नदी तो भारत और चीन से होती हुई पाकिस्तान जाती है। लेकिन फिर भी अगर भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान का पानी रोका तो इसका क्या परिणाम होगा? मैंने पूछा लेखक और विश्लेषक पीजी रसूल से।
जहाँ तक जग्राफाई हकीकत का ताल्लुक है और दरियाओं के कुदरती बहाव का ताल्लुक है, इनको पाकिस्तानी इलाकों से गुजरना ही गुजरना है। इस माहदे में सिर्फ इस हकीकत को तस्लीम किया गया है, इसमें कोई नया फेवर नहीं है जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से साथ किया हो। दूसरी बात है कि यही तजुर्बा फिर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ दोहरा सकता है और वो दरिया ब्रह्मपुत्र और दूसरे दरियाओं का पानी रोक सकता है। इस तरह से हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतों में भी आफत और तबाही आ सकती है।
गौरतलब है कश्मीर की सरकार के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने पहले ही भारत सरकार की इस नीति का समर्थन किया है। सरकार का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी से कश्मीर को प्रतिवर्ष 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कश्मीर की नदियों पर पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरी योजनाओं को लेकर अक्सर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद पैदा होते रहे हैं, जिन्हें हल करने के लिए इंडस वाटर कमीशन बनाया गया है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। कार्यक्रम में हम सीधे आपको पाकिस्तान ले चल रहे हैं, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतेशाम उल हक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज अखबारों की समीक्षा वहां से करेंगे। एहतेशाम साहब, सबसे बड़ी हिंदुस्तान और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी खबर इस समय यही होगी कि भारत सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में नहीं आएगा। वहां के अखबार क्या कह रहे हैं एहतेशाम साहब?
देखिए जी, आज सारे बड़े अखबार मेरे सामने पड़े हुए हैं और ज्यादातर खबरें जो है ना वो फ्रंट पेज के वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। अब अंग्रेजी का बड़ा अखबार है, सबसे बड़ा डॉन, इसकी हेडलाइन है सार्क समिट इन डोल्ड्रम आफ्टर इंडिया पुल्स आउट। साथ ये भी बता रहे हैं कि दी वायलेशन ऑफ इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इसके बाद फिर دوسرا بڑا اخبار ہے اردو کا, اس کی بھی یہ ہے جی بڑی خبر ہے فرنٹ پیج پہ, تین کالم کی, بھارت کا سارک سربراہ کانفرنس میں شرکت سے انکار, بنگلہ دیش بھوٹان اور افغانستان کی حمایت ملنا کا بھی دعویٰ. ساتھ ہی ہیڈ لائن اس کی یہ بھی ہے کہ بھارت سن لے پانی ہوگا, پاکستان کی فارن آفس طرف سے اور فارن منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ ایک اسلام آباد سے انگریزی کا اخبار ہے, یہ لکھ رہا ہے مودی نے اسکپ ساتھ سمٹ, اور پھر اسی طرح سے یہ بھی لکھ رہا ہے کہ اگر ریوکیشن آف انڈس واٹر ٹریٹی ٹو بی سین ایز ایکٹ آف وار ستار جی. سارے اخبار بھی زیادہ تر اسی حوالے سے لکھ رہے ہیں اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر پانی روکا گیا تو کیا ہوگا. اب جیسے مودی صاحب کا کہنا تھا کہ جی اگر خون بہے گا تو پھر پانی نہیں بہے گا, تو لوگ اس
ان کا یہ کہنا تھا کہ خون اور پانی ایک ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے.
جی ہاں, لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی اگر پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا, تو یہ اس طرح کی کنٹروورسی ہے اور انتہائی ٹینشن کے ماحول میں خبریں جو ہے وہ سارا وقت یہی نظر آ رہی ہیں, ٹیلیویژن ہو اخبارات ہو,
احتشام صاحب یہ تو بات ہوئی اخباروں کی کہ وہاں کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ راجنیتک جو گلیاروں میں کیا حال چال ہے؟
دیکھیے جی عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب رات کو پہنچ گئے ہیں امریکہ اور انگلینڈ کے دورے کے بعد, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھک کریں گے اور پھر آرمی چیف کو بھی بلائیں گے باقی لوگوں کو بھی, اور یہ اس ریجن میں بدلتے ہوئے صورتحال اور ہندوستان کی طرف سے جو ٹف ٹاک دی جا رہی ہے اس کو کتنا لیا جائے. لیکن اچھی بات جو نظر آ رہی ہے جی کہ جی اخبارات بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی اور ایڈیٹوریل بھی جو لکھے جا رہے ہیں وہ ان کا فوکس یہ ہے کہ یہ ریٹرک جو ہے نا, یہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کا, سخت بیانات کا, اس کو روکنا چاہیے. یہی بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا بھی کر رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا لینا چاہیے, پھر سول سوسائٹی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ بیان بازی سے معاملات خراب ہو گئے, بات چیت کا دروازہ کھلنا چاہیے. تو ایک طرف تو ٹینشن انتہا پہ پہنچی ہے, لوگ بھی پریشان ہیں, جس طرح میرا خیال ہے پاکستان میں ہندوستان اور بیچ کا راستہ نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سرکاریں کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جاتی ہیں.
جی احتشام الحق صاحب اسلام آباد سے کارکرم میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ہندوستان کے اخبار پڑھ چکے ہیں امر شرما. امر, بڑی خبر کا ہم نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کیا خبریں ہیں ہندوستان میں؟
جی آج کی جو اخبار ہیں یہاں پر انگریزی کا اخبار ہو, ہندی میں ہندی کے اخبار ہو, سب میں یہی خبر بھارت پاکستان کے سمبندھ کو ہی سب سے بڑی خبر بنایا گیا ہے. اور انڈین ایکسپریس اخبار میں ایک بڑی سی تصویر ہیڈ لائن کے ساتھ میں لگائی گئی ہے, جو سمجھوتا ایکسپریس جو دلی اور پاکستان کے بیچ میں چلتی ہے, لاہور کے بیچ میں, اس کی تصویر ہے کہ وہ لوٹ کر آئی ہے. اور منگلوار کی سویرے کی تصویر ہے یہ, جس میں جمیلہ اپنے پتی کے ساتھ جو پاکستان گئی تھی جولائی میں, جب یہ تناؤ بڑھ رہا تھا کشمیر میں گھاٹی میں, جو حالات تناؤ کے بڑھے تھے, لیکن وہ آئی کیونکہ ان کے بھتیجے کی وہاں شادی تھی اور ایک پریوار کے ملنے کا سب سے بڑا ایک فیملی گیدرنگ تھی, تو اس شادی میں انہوں نے جانا طے کیا تھا, وہ لوٹ کر آئیں. تو اس جو ٹھنڈے جو ایک رشتوں سے بھری جو ایک سرد ہواؤں کے بیچ میں ایک گرم جوشی کی یہ تصویر ہے کہ ان کے پریجن وہاں پہنچے اور خوشی الاس سے.
اور اس کے علاوہ اور کون سی یہ
آج کے سمپادکیے میں بھی, کہ انڈین ایکسپریس کے سمپادکیے میں اور چاہے ٹائمس آف انڈیا کے سمپادکیے میں بھی اسی خبر کو بہت توجہ دی گئی ہے
اور اسی کا وشلیشن چھپا,
اسی کا وشلیشن دیا گیا. میں ایک دوسری خبر کی اور آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا. ٹائمس آف انڈیا نے کہا ہے کہ جو ایک ٹھیک ایک سال پہلے جو دادری میں اخلاق کی ہتیا کر دی گئی تھی, ایک بھیڑ نے ان پر کتھت طور پر گو مانس رکھنے کے جو آروپ پر ہتیا کر دی تھی, اب پولیس کو کوئی ایسے ثبوت نہیں مل رہے کہ وہ کورٹ میں اس کو ثابت کر سکے, اس لیے وہ معاملے کو ختم کرنے کے اور بڑھ رہی ہیں. آپ کو ایک دوسری خبر میں بتاؤں کہ دا ہندو اخبار میں چھپی ہے کہ بھارت میں بنا نوکری والے آرتھک وکاس سے بھارت کی یوا کو ستا رہا ہے یہ, اور روزگار پر تازہ لیبر بیورو کے جو وارشک گھریلو سرویکشن کے انوسار سال 2015-16 میں دیش کی بےروزگاری در 5 سالوں میں سب سے اچھ در تک پہنچ گئی ہے.
جی بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کرنے کے لیے. کارکرم میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور رپورٹ کا ذکر کرتے ہیں. جسٹس مارکنڈے کاٹجو کے ایک فیس بک پوسٹ میں بہار کو لے کر آپتی جنک ٹپڑی کرنے کے بعد کافی ہو ہلا مچا ہے. بہار میں کاٹجو کے اس بیان پر ویروھ جتایا گیا اور سوشل میڈیا پر ان کی کافی آلوچنا ہوئی تھی. اس کے بعد کاٹجو نے کھیت جتاتے ہوئے کہا کہ مزاق میں انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں. حالانکہ اس کے بعد بھی ویروھ جاری ہے. بہار میں سبھی دلوں کے نیتا ان کے ویروھ میں سامنے آئے ہیں. کیا ہے پورا معاملہ, سنتے ہیں نیرج سہائے سے.
पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार देने संबंधी जस्टिस मार्कंडेय काटजू के विवादास्पद फेसबुक पोस्ट पर बिहार के नेताओं ने सारे आपसी मतभेद भुलाकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पटना में मार्कंडेय काटजू के बयान पर पलटवार करते हुए जस्टिस काटजू से पूछा कि उनको बिहार पर ऐसी बात कहने का क्या अधिकार है। उनके अनुसार
सुना है कि आज एक आदमी कुछ बोल दिए, कश्मीर के साथ बिहार को भी देने के लिए तैयार है, लगता है वो बिहार के माई बाप है, मालिक है क्या हमारे? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त यही हुआ, भगवान महावीर यही जन्मे, यही उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, यही वो जगह है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, इसी पटना की धरती से किया, इसी पाटलिपुत्र की धरती से, तो घर बैठे माई बाप बनने लगते हैं बिहार। हो सकता है बहुत लोगों को बिहार से आजकल कठिनाई हो गई है कि यहाँ आवेंगे तो शाम में बिताएंगे, कोई समस्या किसी को है ताई कांट खेल, उनके लिए तो हमने सुझाव दे दिया है कि पत्ती बुझा के फल का जूस पी लीजिए, मान लीजिए वही पी रहे हैं, बिहार के हर इंसान के सम्मान का ख्याल।
इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता प्रगति मेहता का कहना है कि
बिहार का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिहार का अपमान सिर्फ एक राज्य का अपमान है बल्कि देश का अपमान है, और इस तरह की भाषा जो है यह निगेटिव सेंस में है और इसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है, उनको पता भी है और उनको समझ भी है, यह सबकी लोकप्रियता के लिए बिहार पूरे देश को दिशा देता है, बिहार से जो क्रांति निकली उसकी पूरे देश और दुनिया में गूंज रही है, इसलिए काटजू जी को ऐसे बयान नहीं बोलना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए।
वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से लगभग सभी मुद्दों पर मतभेद रखने वाले मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने भी जस्टिस काटजू के बयान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि
मार्कंडेय काटजू जी ने जो बयान दिया है अपने फेसबुक पर, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जज रहे हुए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पद पर रहे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति यदि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। किसी पाकिस्तान को दे देंगे और बदले में बिहार भी दे देंगे, इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, इसलिए हमारी मांग है कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार।
इस बीच जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने पटना के शास्त्री नगर थाने में जस्टिस काटजू के खिलाफ बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू पहले भी विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह सफाई दी है कि उनका यह पोस्ट मजाकिया था जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए था। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब आपको एक विज्ञान की खबर बताते हैं कि दुनिया का पहला शिशु एक नई तकनीक तीन व्यक्ति प्रजनन तकनीक के इस्तेमाल से पैदा हुआ है। पत्रिका न्यू साइंटिस्ट ने इसकी खबर दी है। 5 महीने के इस लड़के में सामान्य तौर पर अपने माता पिता का DNA है और साथ में एक दानकर्ता का एक अनुवांशिक कोड है। अमेरिका के डॉक्टरों ने यह अभूतपूर्व कदम उठाया और सुनिश्चित किया कि बच्चा उस अनुवांशिक स्थिति से मुक्त होगा जो कि उसकी माँ के जीन में है। बच्चे की माँ जॉर्डन की रहने वाली हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने तीन लोगों के DNA का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा किए हैं। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में आखिरी सालों में हो गई थी। ये एक पूरी तरह से और एकदम नया तरीका है। इस पूरी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। भारत इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर को होने वाले सार्क सम्मेलन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और इस बारे में सार्क सम्मेलन बैठक की अध्यक्षता कर रहे नेपाल को इसकी जानकारी दे दी है। सीरिया के एलेपो शहर में सीरियाई सेना और सरकार समर्थक लड़ाकों ने कई मोर्चों पर विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी सेना ने एलेपो शहर के उत्तर में स्थित इलाकों को कब्जे में ले लिया है। हमले के समर्थन में हवाई हमले भी जारी हैं। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में हुए 2 आत्मघाती हमलों में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हैं। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। जेदा में हुए हमले में हमलावर ने 8 लोगों को निशाना बनाया और इसके अलावा बाया में हुए हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।